हरे कृष्णा। रविवार ये सत्संग कार्यक्रम में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हर रविवार की तरह आज भी सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक हम रविवार ये सत्संग कार्यक्रम मनाएंगे। 10:30 से 11:00 बजे तक श्री श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन हुआ। 11 से 12 बजे तक प्रवचन होगा। 12 से 12:30 बजे तक श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होगा। तो हम सबसे अनुरोध करते हैं कि कृपया वे प्रवचन में बैठ जाए। आज प्रवचन देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है श्रीमान सर्वात्मा हरि प्रभु। हम प्रभु जी ने उनका सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट किया है। उसके पश्चात उन्होंने MBA बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है। वे अपने कॉलेज के समय के दौरान ही इस्कॉन संस्था से जुड़े। 3 साल तक उन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप में जॉब भी किया। उसके पश्चात 2010 में वे इस्कॉन में या मंदिर में फुल टाइम ब्रह्मचारी के रूप में सेवा प्रदान करना चालू किए। यहाँ गोवर्धन इको विलेज में आने के पश्चात उन्होंने अनेकों डिपार्टमेंट में सेवा प्रदान की है। विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में प्रभु जी ने सेवा दी है। अभी वे डहानू में प्रचार कर रहे हैं। साथ ही साथ गोवर्धन इको विलेज में जो गेस्ट डिपार्टमेंट है, गेस्ट रिसेप्शन है, वहाँ पे भी वे सेवा प्रदान करते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी हमें प्रवचन देने के लिए उपलब्ध है। प्रभु जी गीता जयंती और गीता महात्म्य इस विषय पे हमें मार्गदर्शन करेंगे। पारंपरिक रूप से 3 बार हरि बोल बोलकर हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे, धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सभी अतिथियों से हम पुनश्च एक बार अनुरोध करते हैं कि वे प्रवचन में बैठ जाए। 11 से 12 बजे तक प्रवचन होगा। उसके पश्चात 12:30 बजे तक महाआरती होगा और 12:30 बजे सभी के लिए लंच प्रसाद की भी व्यवस्था है। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जयो राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जयो रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद
जय श्री प्रभुपाद की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी का आज के हमारे रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। सबको आवाज आ रही है? पीछे जो बैठे हैं वो कौन सी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। तो क्योंकि ये गीता जयंती का महीना है तो हम संक्षिप्त में भगवत गीता के जो संदेश है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शंकराचार्य जी ने बहुत ही सुंदर गीता महात्म्य लिखा है, तो उस गीता महात्म्य में बहुत सुंदर श्लोक प्रभुपाद जी भूमिका में लिखते हैं, तो उसको हम यहाँ पे दोहराएंगे। तो उसमें कुछ श्लोक बोलेंगे, उसमें बोलते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थोवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो बोलते हैं कि ये जो भगवद गीता जो है, तो ये भगवद गीता यहाँ पे सब स्टॉल लगा है, तो बहुत सुंदर शास्त्र है ये और हर एक के घर में होना चाहिए। अब सबके घर में है ये भगवद गीता, सबके घर में है। ओके, तो इसमें बोला है कि सर्वो उपनिषदो गावो, कि ये जो भगवद गीता है, ये भगवद गीता कैसी है, सर्व उपनिषद, जो सभी उपनिषद है, 108 उपनिषद है, उसका सार है ये। और इसकी तुलना जो है ये गाय से की गई है, दोग्धा गोपाल नंदनः, और इस गाय का भी दूध जो निकालने वाले हैं वो है गोपाल नंद, गोपाल जो है नंद महाराज के पुत्र, वो इसको अभी दूध निकालने वाले हैं। और बताया गया कि ये गाय जो है बिना बछड़े के दूध नहीं देगी, तो यहाँ पे बछड़ा कौन बना है, पार्थोवत्स। तो अर्जुन जो है, ये अर्जुन यहाँ पे बछड़े बने। और फिर ये दूध निकालने के बाद इसका पान, ये अमृत तुल्य जो दूध है इसका पान कौन करने वाला है, सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो हम सब यहाँ पे जो बैठे, आप सुधीर यानी आप सब बुद्धिमान लोग जो है, जो यहाँ पे बैठे हैं, आप इसका पान करने वाले हैं। तो इस प्रकार से बोला गया। फिर आखिरी में गीता महात्म्य में बोलते हैं, तो मेरे पीछे आप दोहराइए, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो यहाँ पे इस गीता महात्म्य में ये श्लोक में लिखा है कि इस कलयुग में, इस कलयुग में अभी जो युग चल रहा है वो कौन सा युग है, कलयुग। तो इस कलयुग में क्या होना चाहिए, एक ही शास्त्र होना चाहिए, और वो शास्त्र कौन सा है, देवकी पुत्र गीतम, और एक ही भगवान होने चाहिए। बहुत सारे 33 कोटी देवी देवता तो है ही, और बहुत सारे लोग आके बोलेंगे कि मैं भी भगवान हूँ, मैं भी उनका अवतार हूँ, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि एक ही भगवान होने चाहिए, एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही होना चाहिए। और बोला है कि एको मंत्र सस्य नामानि यानि, बहुत सारे मंत्र है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु, यहाँ पे सुंदर विग्रह आपको दिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के विग्रह ये, तो ये चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आके इस हरिनाम का प्रचार प्रसार करते हैं, और उन्होंने इस कलयुग का जो युगधर्म दिया है वो है भगवान के नाम का जप। और जो हमने आज अभी कीर्तन किया यहाँ पे, अभी छोटा बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे थे, तो जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, तो ये महामंत्र का जप, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, तो उनके नाम का जप, और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और एक ही कर्म होना चाहिए। वो कर्म क्या है, उन भगव जो कृष्ण भगवान यहाँ पे है उनकी सेवा। क्योंकि इस कलयुग में जो शौनकादि ऋषिज हैं, शौनकादि ऋषि जो नैमिषारण्य में थे, वो बोल रहे थे कि कैसे इस कलयुग के जो लोग हैं उनकी अवस्था कैसी होगी। तो 5000 वर्ष पूर्व वो बोल रहे हैं कि अभी जो कलयुग है, ये जो 5000 वर्ष पूर्व ये कलयुग चालू हुआ, और उसी समय उन्होंने बोला था, त्रिकालज्ञ थे, तो भविष्य में देखा उन्होंने, और वो बोलते हैं, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता, कि इस कलयुग के जो लोग हैं उनकी आयु जो है वो बहुत ही कम होगी, प्रायण अल्पायुष, अल्पायुषी होंगे वो, है ना। तो 100 साल तो बताया हमको, लेकिन उसमें भी हम देख रहे हैं कि अपनी आयु जो है कैसी हो रही है, उसमें भी घटती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, बहुत सारी बीमारियां है जकड़ती है। फिर उसके बाद बताया कि मंदा सुमंद मतयो, तो मंद यानी आध्यात्मिक, आध्यात्मिकता जो है उसमें उनकी कुछ भी रुचि नहीं रहेगी, मंद बोला गया, आलसी रहेंगे वो, उसमें रुचि नहीं रहेगी उनकी। और सुमंद मतयो यानी अगर कोई रुचि भी लेता है तो बाहर मार्केट में इतने सारी संस्थाएं रहेंगी और बोलेंगी आप यहाँ पे आ जाइए, और सही मार्ग कौन सा है उनको चुनने में बहुत मुश्किल रहेगी। जैसे आप अभी यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे लोग पहली बार आए होंगे आप यहाँ पे, तो ये मंदिर में, तो कौन सा सही मार्ग है ये, इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, सुमंद मतयो। और अगर सही मार्ग अभी मिल भी गया तो मंद भाग्य, क्योंकि अगर भगवान के मंदिर में जाना है, कुछ सत्संग में जाना है, कुछ भगवान का नाम जप करना है, कुछ अच्छे कार्य करने हैं, आध्यात्मिक कार्य करने हैं, तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी अपने रास्ते पे, तो मंद भाग्य होगा। और बताया गया कि उपद्रितः, उपद्रितः यानी अगर बाधा भी नहीं रहेगी तो एक जगह हम बैठे भी रहेंगे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन आपका मन आपको साथ नहीं देगा। उपद्रितः, बहुत सारे मन जो है, मन इधर उधर भागते रहेगा, बोलते बोले बोलेगा कि कब जाना है, अभी अंदर कब जाना है, और क्या देखना है यहाँ पे, और क्या चीज़ है, किधर खाने के लिए है ना, अभी यहाँ से कब निकलना है वापस। तो इस प्रकार से उपद जो मन है वो मन हमेशा घूमता रहेगा, सुनेगा नहीं, यहाँ पे एक जगह बैठ के सुनेगा नहीं। तो इसलिए इस कलयुग की जो व्याख्या है वो ये शौनकादि ऋषि जो है वो करते हैं। और तो जैसे और भगवान भी बोलते हैं भगवद गीता के अंत में, तो जो गीता का सार है, गीता का सार जो है, जो श्लोक बताया गया है, तो उसमें बोलते हैं कृष्ण भगवान कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो वहां पे भी एकम बोला है, तो उनको ही हमको शरण जाना है। अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामि मा शुच, कि मैं जो हूं मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इतनी गारंटी दे रहे हमको कृष्ण भगवान जो है, हमको ये गारंटी दे रहे। तो ये क्रैश कोर्स था, तो ये सोचिए भगवत गीता जो है ये कहाँ पे बताई गई है, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे। तो कोई बोलेगा कि ये जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उपदेश जो है, सबसे महत्वपूर्ण उपदेश, तो ये गीता जो है मैनुअल है, ये मेरे जीवन की ये मेरे जीवन कैसी, मुझे मेरा जीवन कैसा जीना है, इसका ये मैनुअल है। तो इसलिए ये मैनुअल जो है, ये उपदेश जो है, ये युद्ध भूमि पे क्यों, कोई सोचेगा ऐसे, क्यों युद्ध भूमि पे ही देना है हमको, कोई ऐसी जगह पे नहीं कि जहाँ पे सुंदर वातावरण हो, जहाँ पे बैठे हैं कृष्ण भगवान बैठे हैं और बाकी उनके अर्जुन मित्र बैठे हैं और फिर वहाँ पे उनके उपदेश सुना रहे। लेकिन कहा गया कि कैसे ये जीवन जो है ये भी, जैसे यहाँ पे युद्ध में जहाँ पे अर्जुन जो है भ्रमित हो गया था, उसके मन के ऊपर तनाव बढ़ गया था, संकट में था, क्या करे, तो उस समय ये भगवद गीता बोली गई है। तो वैसे ही अपना जीवन भी जो है, ये जीवन भी इस युद्ध की तरह है, बहुत संघर्ष है अपने जीवन में, बहुत संघर्ष है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, हमको लग रहा है कि हम आजू बाजू में देख रहे हैं कि लग रहा है कि ये सभी लोगों के जीवन में संघर्ष चल रहा है, सबका जीवन ऐसे ही है, तो मेरा भी जीवन ऐसे ही है, तो चलते रहेगा। तो इस प्रकार से हम उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास नहीं कर रहे, तो ये जीवन जो है बहुत ही संघर्षमय है। तो इसलिए ये जो गीता के उपदेश जो है, ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध भूमि पे बताया, तो ये क्रैश कोर्स है। सोचिए सर्वो उपनिषदों गावो, है ना, तो सभी उपनिषदों का सार जो है, तो पूरा सार केवल ये जो जो भी समय लगा होगा कृष्ण भगवान को बोलने के लिए, 1 घंटा 2 घंटा जो भी, जिसमें ये भगवद गीता बताई है, तो ये समय में उन्होंने ये सब क्रैश कोर्स दिया हमको, तो कितना आसान कर दिया उन्होंने हमारे जीवन में। हमें जीवन में सबसे मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, ये जानने के लिए, या मेरे जीवन के दुख जो है उससे कैसे बाहर निकलना है, ये समझने के लिए मुझे पूरे उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरे पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना, मुझे कोई इतिहास या कोई वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल ये किताब जो है, ये किताब सफिशियंट है कि मुझे सही मार्गदर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार से, और शिल प्रभुपाद जी यहाँ पे जो बैठे हैं, शिल प्रभुपाद जी उनकी उम्र की 17वीं इसमें प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में जाके इसका प्रचार करते हैं। तो प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में थे, एकदम शुरुआत के दिनों में, और उस समय उनको एक आदत थी किताब लिखने की, तो हर समय डायरी लिखते थे, आज क्या हुआ सब लिखते थे उसमें, आज मैं कहाँ से किधर गया, कहाँ पे प्रवचन दी मैंने, वो सब लिखते थे, आज मेरे कितने पैसे खर्च हुए वो सब लिखते थे, किधर पैसा खर्च किया, इधर से उधर जाने के लिए कितना पैसा लगा मुझे, वो सब डायरी में लिखते थे, नोट डाउन करते थे। और वो डायरी जो है उनके एक शिष्य को देते हैं वो, और वो डायरी अभी भी है, तो उसमें एक शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे आज लिखते हैं कि आज बहुत लोग आए, आज मैंने भगवत गीता का एक एक भगवत गीता के ऊपर एक क्लास ली और उसमें बहुत लोग आए। ये कहाँ पे लिख रहे हैं? न्यूयॉर्क में। तो उसमें लिख रहे हैं वो आज बहुत लोग आए, और कितने लोग थे उधर लिखते हैं, कितने लोग थे? 5 लोग उस भगवत गीता की क्लास के लिए। तो सोचिए वो 5 लोग भी बहुत बड़ी संख्या थी उनके लिए। और फिर आगे लिखते हैं कि कैसे जो मैंने उन्होंने जो प्रसाद बनाया था उनके लिए, फिर बोलते हैं कि अभी मुझे जो प्रसाद बनाया वो लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत उन्होंने आनंद से उसको स्वीकार किया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे है? मुझे अभी इसका राज पता चल गया है कि कैसे ये लोगों को जो है कृष्ण भावना दे सकते हैं, इसका राज अभी मुझे पता चल गया, क्योंकि ये लोगों को प्रसाद जो है बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए जो कचौरी, जो प्रभुपाद जी ने कचौरी बनाई थी तो वो लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने ये कुछ थोड़ी मात्रा में लोग थे लेकिन उनको लेके प्रभुपाद जी ने इसका प्रचार किया, तो न्यूयॉर्क में जाके, और वहां पे जाके प्रभुपाद जी ने इसका आंदोलन जो है पूरे विश्व में इसको फैलाया। तो ये भगवद गीता जो है हमें बहुत सुलभता से प्राप्त हुई है अपने जीवन में। तो इस प्रकार से ये भगवद गीता जो है प्रमुख 5 विषयों के बारे में चर्चा करती है। तो भगवद गीता के 5 विषय बताए गए हैं, जिसमें ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ये 5 विषय है, और इसमें जो 4 विषय है वो 4 विषय शाश्वत है, उसमें कभी बदल नहीं होता। तो ईश्वर जो है, ईश्वर जो है भगवान श्री कृष्ण, वो शाश्वत है ना। तो हम इस भौतिक संसार में आते हैं तो हम भी इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, हम इस भौतिक संसार में इच्छा से आए हैं कि हमको भी स्वामी बनना है, हमको भी ईश्वर बनना है। तो इसलिए इस भौतिक संसार में ये जगह यहाँ पे बनाई गई है और यहाँ पे हम आए हैं। तो हम भी ईश्वर है लेकिन छोटे मोटे ईश्वर है, और कुछ समय के लिए रहते हैं, लेकिन भगवान जो है शाश्वत रूप के लिए, शाश्वत समय के लिए जो है वो ईश्वर है। तो परमेश्वर जो है, परम ईश्वर जो है वो कृष्ण है। और इसके बाद जो जीव जो है उनका स्थान बताया है कि जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास। तो वो जीव जो है भगवान की शक्ति है, और हम सब यहाँ पे जो बैठे हैं ये सब जीव है, हम भगवान की शक्ति हम। तो हमारा स्वरूप क्या है? भगवान की सेवा करना है ना। तो ये जीव जो है उसका स्वरूप कभी बदलता नहीं। तो हम अभी हरे कृष्णा यहाँ पे जो बैठे हैं, यहाँ पे जो बैठे हैं, इधर देखिए यहाँ पे प्रवचन चल रहा है, थोड़ा समय आप शांति रखिए क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा, है ना। तो आप भी थोड़ा कुछ आधा घंटा बचा है उसमें हम सुनेंगे भगवद गीता के ऊपर। तो जीव जो है, तो जीव इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है ना, और वो शाश्वत रूप के लिए भगवान का सेवक दास रहता है। तो हम यहाँ पे आके, भौतिक जगत में आके हम भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, और उनकी सेवा करने से बजाय हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए हम किसी ना किसी की तो सेवा कर रहे हैं इस भौतिक संसार में, किसी ना किसी की तो सेवा कर ही रहे, लेकिन वास्तविक में हमें सेवा किसकी करनी है? भगवान की करनी है, क्योंकि हम उनके दास हैं। और बाद में बताया कि कैसे प्रकृति जो है वो कभी, वो उसमें परिवर्तन होता है लेकिन वो प्रकृति जो है शाश्वत है, लेकिन उसका खाली एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। तो ये भौतिक संसार जो है, हम सब चीज़ देख रहे हैं इस भौतिक संसार में, ये भगवान की प्रकृति है। और उसके बाद जो काल जो है वो भी काल चक्र की तरह है, कभी भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, तो इसमें ये काल चक्र चलते रहता है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन ये भी काल भी शाश्वत है, लेकिन एक विषय और एक वस्तु जो है शाश्वत नहीं है, वो है कर्म। तो हमारे कर्म जो है, ये कर्म शाश्वत नहीं है। कैसे? भगवान यहाँ पे बताते हैं कि कैसे इस जो उन्होंने कर्म बताए गए हैं, जो अकर्म की विधि उन्होंने दी है, अगर उस विधि को हम अपनाते हैं तो हमारे कर्म भी हम बदल सकते हैं और हम अपने धाम जा, भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सुंदर 5 विषयों के बारे में चर्चा की है। तो यहाँ पे इस भगवद गीता में हम भूमिका में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे अर्जुन और दुर्योधन, तो उनके सामने विकल्प थे, उनको चयन करना था कि कैसे कृष्ण है और उनकी नारायणी सेना है ना। तो दोनों जाते हैं, दोनों जब जाते हैं कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए, इस अभी कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों मदद मांगने के लिए जाते हैं। उस समय अर्जुन जो है, अर्जुन क्या मांगते हैं, तो कृष्ण बोलते हैं एक समय एक 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 साइड में, एक पक्ष में मैं रहूंगा, खुद रहूंगा, जहां पे मैं मेरा शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, और दूसरे पक्ष में मेरी पूरी नारायणी सेना होगी। तो उसमें अर्जुन किसको चयन करते हैं, कृष्ण भगवान को चयन करते हैं, है ना। और दुर्योधन जी जो थे वो सोच रहे थे मन में कि क्या मूर्ख है ये अर्जुन, है ना, इसने किसको चयन किया, कृष्ण को, जो अपना हथियार भी नहीं उठाने वाले, क्या फायदा है कृष्ण को लेके। लेकिन हम देखते हैं कि भगवद गीता के अंत में उसका क्या परिणाम होता है, अर्जुन जो है अर्जुन जीत जाते हैं, है ना। तो हम भी, हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य यानी उनका, उनकी जो जो लक्ष्मी है, पूरी दुनिया जो है लक्ष्मी के पीछे भाग रही है, है ना। तो हमें भगवान चाहिए, भगवान का ऐश्वर्य चाहिए। तो हम भगवान को, भगवान को अगर हमारे जीवन में लेंगे, उनको अगर चयन करेंगे, अगर वो विकल्प को चुनेंगे, तो हम भी अपने जीवन में क्या होंगे, हम अपने जीवन में यश को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से, तो कुछ दिन पहले यहाँ पे अभी भगवद गीता सीरीज चल रही है, तो उसमें बताया गया था कि कैसे अपना जीवन जो है ये एक खेल की तरह है, तो कैसे इस खेल में, कोई भी खेल खेलने से पहले हमको उस खेल के नियम मालूम होना बहुत जरूरी होता है, है ना। तो इस जीवन में भी, ये जीवन भी एक खेल की तरह है, तो कैसे इस जीवन में भी हमें हमारे इस जीवन के खेल जो है, इसके नियम क्या है, ये नियम मालूम होना बहुत जरूरी है। और ये नियम जो है, ये नियम कौन बताता है, भगवद गीता बताती है। तो ये नियम जो है, नियम कभी बदलने वाले नहीं है, लेकिन हमको बदलना पड़ेगा, है ना। हम सोचते रहेंगे कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा होगा क्या, वो वैसा नहीं होने वाला है। जो भगवद गीता यहाँ पे बता रही है, जीवन क्या है, ये भौतिक संसार क्या है, मुझे मेरे जीवन में आके क्या करना है, ये जो नियम है जीवन के, ये भगवद गीता बताएगी। तो उसी प्रकार से जैसे एक सुंदर कहानी आती है, जैसे एक बार समंदर से बहुत बड़ा एक नौसेना का जहाज, जो युद्धपोत रहता है, वो नौसेना का जहाज एक बार समंदर से जा रहा था। और उस समय जो जिस रास्ते से वो जा रहा था, उसी रास्ते पे सामने वो देखते हैं कि सामने से एक दूसरा जहाज उनको दिखाई देता है। तो वो भी सोचते कि यहाँ पे भी सामने बहुत बड़ी जहाज दिख रही है। तो ये जो नौसेना का जो जहाज था, इसका जो कप्तान था, वो कप्तान यहाँ से बोलता है कि, वो सामने वाले जो जहाज है उसको बोलता है कि आप क्या कीजिए, आपका रास्ता जो है, रास्ता बदल दीजिए, हमको रास्ता दीजिए। और फिर सामने से बोलते हैं कि हम आपको रास्ता नहीं दे सकते, आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो इधर के, इस साइड वाले जो थे नौसेना वाले, जो जहाज थी बहुत बड़ी जहाज, वो बोलती है कि आपको मालूम नहीं ये कौन है, किसकी जहाज है ना, ये किसका युद्धपोत है मालूम नहीं आपको, ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये जहाज है नौसेना का, तो आपको रास्ता देना पड़ेगा, हम नहीं रास्ता बदलेंगे, ऐसा बोलते। तो पूरी जोर से कह रहे थे वो। और उस समय वहां से आवाज आती है कि मैं कौन हूं, मैं एक लाइट हाउस हूं, और मैं बदल नहीं सकता, मेरा मैं तो यहां पे खड़ा हूं, आपको ही रास्ता बदलना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कुछ नियम है, उस नियमों को अगर हम नहीं जानेंगे, तो हमारे जीवन में जो भ्रमित अवस्था है, जो तनाव है, वो तनाव होते रहेगा, आते रहेगा। उस तनाव से कैसे बाहर निकलना है, ये भगवद गीता हमें बताती है। तो कैसे भगवद गीता जो है, जैसे अर्जुन के सामने जो स्थिति आती है, जब अर्जुन कहते हैं कि सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, कि हे अच्युत आप मेरा रथ जो है वो दोनों सेनों के बीच में लेके आइए। और जब अर्जुन देखते हैं दोनों सैनिक, तो कृष्ण को मालूम था कि ये रथ कहाँ पे लेके जाना है। तो जब दोनों सेनों के बीच में ये रथ को जब खड़ा करते हैं, तब सामने देखते हैं कि वहां पे कौन है, भीष्म पितामह है, और वहां पे द्रोणाचार्य है, तो अर्जुन अभी तक भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को देखने से पहले अभी तक वो खुद को एक क्षत्रिय, उनकी जो पहचान थी वो पहचान क्या थी, एक क्षत्रिय, मैं एक राजा हूं। और जब अभी उनके सामने रथ खड़ा किया है तो अभी उनकी अलग अलग पहचान जो है वो बाहर निकल रही है। अभी जब वो देख रहे हैं कि भीष्म पितामह को देख रहे कि जिनके गोद में वो बचपन से खेले हैं, उनकी गोद में वो बड़े हुए हैं, तो अभी देख रहे कि अभी मुझे उनके ऊपर बाण चलाना है, उनको मारना है मुझे, तो अभी उनकी पहचान जो है एक कि वो मेरे दादाजी है, है ना, मैं उनका पोता हूं, तो वो पहचान बाहर निकल रही है। एक पारिवारिक आसक्ति जो है वो बाहर निकल रही है। जब वो द्रोणाचार्य को देख रहे कि देखा है कि मेरे पास जो भी कौशल्य है, मेरे पास जो भी धनुर्विद्या मैंने सीखी है, वो धनुर्विद्या तो मैंने इनसे सीखी है, है ना, तो उनकी जो कला आसक्ति थी वो भी बाहर निकल रही है। और सोच रहे कि अभी मुझे मेरे जो दादाजी है, मेरे जो गुरुजी है, जिस गुरुजी को मुझे सम्मान करना चाहिए, उनको आदर करना चाहिए, अभी उनके ऊपर मुझे बाण चलाना पड़ेगा, है ना। तो ये अभी एक एक क्षत्रिय होने की पहचान, एक राजा थे तो एक क्षत्रिय होने के नाते उनको पूरे धर्म की स्थापना करनी है, और अभी एक एक पारिवारिक आसक्ति, एक भीष्म पितामह को देख रहे और बाकी अपने जो बाकी जो उनके सगे संबंधी उनको देख रहे, और यहाँ पे अपने गुरुजी जो है द्रोणाचार्य उनको देख रहे, तो उनके सामने जो है ये अभी तनाव की परिस्थिति निर्माण हो गई है, उनके सामने बहुत बड़ा संकट निर्माण हो गया। अभी अभी क्या करें, अभी क्या करूं मैं। तो इसलिए ये भगवद गीता जो है, ये भगवद गीता जब ये युद्ध की भूमि, युद्ध भूमि पे ये भगवद गीता बताई गई है ना। तो इसलिए हमारे जीवन में भी कैसे इस भगवद गीता को अपना के, अर्जुन ने भी इस भगवद गीता को जब सुना तो वो बोलते हैं कि नष्ट मोह स्मृतिर लब्ध्वा त्वत् प्रसादेन मयाच्युत, कि आपकी कृपा से अभी मेरा क्या हो गया है, मेरा मोह जो था वो मोह मेरा नष्ट हो गया है ना? और अभी आप जो आप जैसे करिष्ये वचनम तव कि स्थितोस्मि गत संदेह, कि मेरा भी जो भी संदेह था मेरे मन में, जो डाउट था वो सब चला गया है, अभी आप जैसे आपके वचनों को पालन करूंगा मैं। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे परिस्थितियां निर्माण होगी जिसमें हमको लगेगा कि अभी क्या करना है, अभी किस कौन से विकल्पों को चयन करना है, क्या इसमें ये परिस्थिति बाहर कैसे निकलना है हमारे, क्योंकि भगवान बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये जो भौतिक संसार है ये तो दुखों से भरा हुआ है, और ये इसमें इस परिस्थिति में कैसे इस परिस्थिति से हम बाहर निकल सकते हैं, तो इसके लिए हमें ये भगवद गीता का ज्ञान जो है, ये भगवद गीता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो भगवद गीता जो है हमें अपना वास्तविक स्वरूप क्या है उसको दिखाती है। तो अर्जुन जो है उनका स्वभाव था एक क्षत्रिय, उनका एक स्वधर्म था, स्वधर्म भी जो था एक क्षत्रिय का था, और यहाँ पे उनको क्षत्रिय होके यहाँ पे युद्ध करना था, लेकिन अभी उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ गया है कि मैं कौन हूँ, बराबर ना, मैं कौन हूँ। तो हमारे जीवन में भी हम बहुत कुछ करते हैं, हमारा जो समय है, हमारा पूरे जीवन का समय, हमारी पूरी शक्ति जो है हम किसी चीज पे लगाते हैं, और फिर वो लगाने के बाद फिर हमें ऐसे जीवन में बहुत सारे मोड आते हैं जिसमें हमको लगता है कि अभी मैंने ये क्या किया, मैंने इस व्यक्ति से मैंने इतना प्रेम किया, अभी वो व्यक्ति मुझे पूछ भी नहीं रही है, है ना, मुझे कुछ सम्मान नहीं दे रही व्यक्ति, वो मैं कौन हूँ। कभी लगता है परिवार में ऐसे आपको लगता है कि इस परिवार के लिए मैंने इतना किया और परिवार जो है अभी मेरी मुझे कुछ ये नहीं कर रहा है, है ना। कभी जीवन में जो है हमारे संबंध, तो अर्जुन को भी डर था यहाँ पे मेरे संबंध जो है, संबंध अभी जो है वो नहीं रहेंगे उनके साथ, तो कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन यहाँ पे जो तुम्हारे ये जो पितामह है, भीष्म पितामह है, ये अभी ये इनकी जो पहचान है ये एक आत्मा है, और ये शरीर का अंत होगा, ये आत्मा का अंत नहीं होगा। लेकिन अर्जुन जो है, अर्जुन सोच रहा था कि कैसे, लेकिन मुझे इनके शरीर से आसक्ति है, है ना, ये शरीर तो चला जाएगा, ये शरीर तो मर जाएगा, लेकिन कैसे इस शरीर में रह के भी हमें जो हमारी पहचान जो है वो एक नहीं रहती, है ना। जैसे एक प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे कोई माता पिता है, तो वो माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं, और उसके बाद तब तक वो माता पिता अपने वो बच्चे को अपना बच्चा ही देखते हैं, और बड़ा होने के बाद जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वो जो माता पिता थे जो उनकी जो आदतें हैं या उनका जो मन है वो कैसा बन जाता है, एक बच्ची की तरह बन जाता है ना। तो अभी ये उनके बच्चों को अपने माता पिता को अभी कैसा देखना है, एक बच्चे की तरह संभालना है, क्योंकि ये माता पिता अभी जो बूढ़े हो गए हैं वो बहुत जिद्दी होते हैं, जैसे बच्चा कोई जिद्दी होता है ना। जब कोई हट करता है वो तो बोलता है कि मुझे ये चाहिए, वो सुनता नहीं, वैसे ही ये बूढ़े माता पिता जो है वो भी कैसा कैसे रहते हैं, वो भी हट करते हैं कि मुझे ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, तो वो एक बच्चे जैसा बर्ताव करते हैं। तो उसमें भी हमारी पहचान जो है बदल जाती है। तो वो अभी वो बच्चों को अपने माता पिता को कैसे संभालना है, एक बच्चे की तरह संभालना है। तो इस प्रकार से तो हमारे इस जीवन में भी हम देख सकते हैं हमारा जो हमारी जो पहचान है वो भी बदल जाती है। तो हे अर्जुन, तुम्हारा स्वभाव एक स्वभाव क्षत्रिय का है, स्वधर्म भी तुम्हारा क्षत्रिय का है, लेकिन एक और तुम्हारा स्वरूप जो है, एक पहचान जो है, वो पहचान अभी बदल रही है। लेकिन मैं तुम्हें अभी ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे तुम्हारा जो स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप, जो अंदरूनी स्वरूप है, जो स्वरूप तुम्हारा ढक गया है इस भौतिक संसार की अलग अलग उपाधियों को स्वीकार करके, जो तुम्हारा असली वास्तविक स्वरूप जो है वो अभी ढक गया है, उसको मैं अभी बाहर निकालूंगा। तो इसलिए अर्जुन को जो है ये कृष्ण भगवान जो ये ज्ञान दे रहे हैं। तो हमारी हमारे जो, और जब हम उस वास्तविक स्वरूप को हम जान लेंगे तो हमारे जीवन में जितने भी बदल होंगे उस बदलों को हम क्या कर सकते हैं, उस बदलों को हम स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि बदल जो है, ये बदल किसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस भौतिक संसार में, भौतिक संसार का जो नियम है, स्थाई नियम है, वो नियम क्या है कि बदल, कि ये भौतिक संसार जो है ये बदलने वाला है, बदलने वाला है। लेकिन चेंज जो है वो किसको भी अच्छा नहीं लगता, सबको क्या चाहिए, परमानेंट चाहिए, घर भी चाहिए, कैसा चाहिए, परमानेंट चाहिए। भाड़े के घर में रहेंगे तो कभी भी लगेगा अरे कभी भी निकाल देंगे हमको यहां से, कभी भी जाना पड़ेगा हमको। नौकरी भी चाहिए, कैसी चाहिए, परमानेंट चाहिए, डर रहता है अगर परमानेंट नौकरी नहीं रहेगी तो कभी भी डर रहेगा कि कभी भी निकाल देंगे मुझे यहां से। तो वैसे ही अगर हम हमारी जो असली पहचान है उसको अगर हम जान लेंगे तो बाकी सब जो उपाधियां हैं जिसको हम साथ में लेके घूम रहे हैं वो उपाधियां निकल भी जाएंगी हमसे, वो बदल भी जाएगी, तो भी हमको डर नहीं रहेगा। तो वो उपाधि जो है उसको कृष्ण भगवान जो है इनको दे रहे हैं, अर्जुन को दे रहे हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्रणम उयति। बता रहे कि कैसे ये जो शरीर जो है, ये शरीर बदलने वाला है ना। कभी 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 कुछ समय पे हम छोटे बच्चे थे, है ना, हमारा शरीर जो था कैसे था, आप अभी सोचिए, आप जब छोटे थे, आपका कुछ फोटो रहेगा उस फोटो को याद कीजिए, है ना, कि कैसा मैं जो था, मैं कैसी दिखती थी या मैं कैसे दिखता था उस समय, और अभी मेरा शरीर कैसे हो गया है, है ना? अभी कैसा दिखता हूँ या अभी कैसे दिखती हूँ मैं, या अभी कुछ समय के बाद और कुछ सालों के बाद मैं कैसे दिखूंगा, वो शरीर जो है वो शरीर क्या होगा, कौमारम यौवनम जरा। लेकिन आत्मा जो है वो आत्मा बदलती नहीं, आत्मा एक ही है, तथा देहांतर प्राप्तिर। लेकिन ये शरीर जब कुछ काम का नहीं रहता, है ना, सब दांत गिर जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, जो खाएंगे उसको पचाना मुश्किल हो जाएगा, पूरे घुटने दर्द करने लगेंगे, है ना, तो उस समय जो है वो आत्मा सोचेगी अभी ये शरीर में जो है मेरी इच्छाएं मैं पूरी नहीं कर सकता, तो इसलिए वो आत्मा क्या करती है, आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है और दूसरे शरीर को धारण करती है। तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आप समझ लीजिए कि आप ये शरीर नहीं है, आप कौन है, आप आत्मा हो। तो ये आपकी पहचान है। तो ये पहली शिक्षा जो है कृष्ण भगवान अर्जुन को दे रहे, तो बहुत ही सुंदर शिक्षा। अगर इस शिक्षा के ऊपर हमारे जीवन की इमारत बनेगी, अगर हमारे जीवन की इमारत की नींव अगर ये शिक्षा होगी कि आत्मा के स्तर पे, तो जीवन कितने भी आंधी तूफान आए, वो जो इमारत है वो कभी गिरने वाली नहीं है, वो खड़ी रहेगी। तो इस प्रकार से, और फिर आगे बताते हैं कैसे, मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुख था आगमा पाइनो नित्य स्ताम तितिक्ष। तो कैसे हमको सहन करना है, हमें हमारे जीवन में जो भी बदल होने वाला, क्योंकि बदल तो होने वाला ही है, बदल होने वाला ही है। किसको 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 लगता है कि अरे मुझे हमेशा किस जवान ही रहना है, सबको लगता है ना कि मुझे हमेशा जवान रहना है, मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए, मुझे किस प्रकार की जो बीमारी है वो नहीं चाहिए, हमेशा कैसे रहना है मुझे, जवान रहना है। लेकिन इस भौतिक संसार में जो है, इस भौतिक संसार में ये बदल जो है, ये बदल होने वाला ही है, इस भौतिक संसार का बदल जो है वो स्थाई है ना? लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, ताम स्थितिक्षस्व भारत, कि हे अर्जुन आप क्या करो, इसको सहन करना सीखो, सहन करना सीखो। अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति आएंगी तो उस समय हमको क्या करना है, थोड़ा हमको रुक जाना है, तो हमारे जीवन में भी तनाव की परिस्थिति होगी है ना, ऐसे कोई संकट आएंगे तो हमें क्या करना है, रुकना है, थोड़ा थोड़ा दो कदम पीछे जाना है, देखना है कि तनाव और वो परिस्थिति को देखना है, और कुछ समय के बाद वो परिस्थिति जो है वो परिस्थिति निकल जाएगी, वो समय निकल जाएगा, तनावपूर्ण समय, और वापस नॉर्मल हो जाएगा है ना। तो इस प्रकार से, तो सहन करना सीखो। तो इस प्रकार से ये भगवद्गीता का सुंदर संदेश जो है, ये भगवद्गीता हमें यहाँ पे बताती है। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति है ना, कि आप मुझे क्या कीजिए, आप मुझे उसमें बोल रहे हैं कि आप मुझे पत्र, पत्र यानी एक साधारण पत्ता जो है, तो विशेष करके तुलसी का पत्ता है ना, तो पत्र पुष्प फूल फल, कोई एक फल रहेगा, और तोयम, तोयम यानी पानी, तो आप ये, तो ये चार चीजें बोल रहे हैं कृष्ण भगवान भगवत गीता में कि योमे भक्त्या प्रयच्छति, तो अगर कोई मुझे भक्ति से प्रदान करता है, कोई प्रेम से प्रदान करता है, तो भगवान क्या बोलते हैं, अश्नामी प्रयतात्मनः, कि उसको मैं स्वीकार करता हूं, योमे भक्त्या प्रयच्छति अश्नामी प्रयतात्मनः, कि उसमें बोल के वो उसको मैं स्वीकार करता हूं। कोई बोलेगा कि क्या है ये चार चीजें, कोई साधारण पत्ता या फूल या फल या तोयम यानी पानी, ये साधारण, ये क्या बोल रहे हैं भगवान, तो बता एक बताते हैं कैसे कि हमको कृष्ण भगवान जो बोल रहे हैं कि कैसे हमें शुरुआत, ये भगवत गीता में ये ज्ञान दे रहे कि कैसे हमें अभी तक जो है कुछ देने की आदत नहीं है, है ना, भगवान को कुछ अर्पण करने की आदत नहीं है, लेकिन वो आदत लगाने के लिए कृष्ण भगवान हमें क्या बोल रहे हैं कि आप ये चार चीजों, ये चार चीजों से चालू करो, वास्तविक में हर एक चीज जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, वो उनकी उनके लिए बनी है, लेकिन अभी क्या कर रहा हूं मैं, अभी मैं हम सोच रहे हैं या सोच मैं सोच रहा हूं कि ये इसका भोग मैं कैसे करूंगा, है ना, ये वस्तु का भोग मैं कैसे करूंगा, लेकिन वास्तविक में वो किसके लिए बनी है, उनकी प्रसन्नता के लिए बनी है। जैसे एक कहानी आती है कि एक बार एक साधु जो है, वो साधु सन्यासी जो है, तो वो भिक्षा मांग के घर घर जाके भिक्षा मांगते थे, और जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो वैसे तो उनको कुछ भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो दूसरों के ऊपर परोपकार करने के लिए वो जाते हैं उनके द्वार पे भिक्षा मांगने के लिए, कि जिससे कि वो जो गृहस्थ जीवन में जो है, जो फैमिली जीवन में फंसे हैं, कि उनको थोड़ा ज्ञान दे, वो भिक्षा के बहाने उनको थोड़ा ज्ञान मिले और फिर उनको भी सही मार्गदर्शन हो। तो ये साधु जो है, ये साधु घर घर जाके मांग रहे थे, तो वहाँ पे एक स्त्री जो, एक घर में जाते हैं तो वहाँ की स्त्री जो थी, वो स्त्री देखती कि ये साधु जो है, ये साधु अभी सब घर घूम के आ गए और मेरे द्वार पे आए हैं अभी, तो वो स्त्री क्या करती है, बोलती कि वो क्या करती है, अपने घर में जो ऐश को क्या क्या बोले, जो जो उसके चूल्हे में जो राख थी, वो राख को क्या करती है, वो साधु को दे देती है, बोले ये ले, ये राख ले ले, और वो साधु जो है, साधु उसको बहुत ही प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। और मन में क्या सोच रहे थे, मन में क्या सोच रहे थे कि ये जो स्त्री है इसको कुछ देने की आदत नहीं है, लेकिन कम से कम इसको अभी देने की आदत पड़ गई, तो अभी शुरुआत किससे हुई है, ये चूल्हे की जो राख है उससे देने की आदत चालू हो गई है, तो उनको अच्छा लगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि अभी वो घर में कुछ अनाज के दाने भी देगी, तो इस प्रकार से। तो इसलिए भगवान जो है हमें बोल रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि हमें ये जो बेसिक शुरुआत जो है किससे करनी है, ये फूल से करनी है, या कोई पानी अर्पण करके करनी है, कोई फल अर्पण करके करना है, कोई एक साधारण पत्ता जो है वो पत्ता भी अर्पण करके भगवान को हम सेवा कर सकते हैं। लेकिन भगवान जो है बोलते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए। तो कृष्ण भगवान जो है वो प्रेम के भूखे हैं। हम उनको क्या अर्पण करते हैं उसके भूखे नहीं हैं वो, है ना। जब वो हस्तिनापुर में जाते हैं तो उस समय दुर्योधन जो है, दुर्योधन उनके लिए बहुत सारे 56 भोग बनाते हैं, है ना, तो पूरा घी में उनको बनाते हैं उनके लिए। लेकिन कृष्ण जो है उसको स्वीकार नहीं करते, वो कहाँ जाते हैं, जो विदुरानी थी उनके घर जाके उसको जो भी वो रुके सूखे फल जो उनको दे रही थी उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेम था। तो प्रेम रहेगा तो भगवान जो है वो कुछ भी खा लेंगे, उनको स्वीकार जो है कुछ भी, यानी जो भगवद गीता जो शास्त्र के अनुसार है उसको स्वीकार कर लेते हो। तो इस प्रकार से तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कैसे इस भौतिक संसार में हर एक वस्तु जो है वो उनके लिए है, है ना? तो एक कैसे अपने जीवन में हम सुख और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, उसका सुंदर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कृष्ण भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं। वो बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्दम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, कि कैसे कोई व्यक्ति जो है हर एक, उसका सुंदर अनुवाद देते हैं प्रभुपाद जी लिखते हैं, कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितेशी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ कर सकता है। तो इस भौतिक संसार के जो दुख है इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे उनको जान के कि भगवान जो है वही परम भोक्ता है, वास्तविक में परम भोक्ता जो है वही है। मेरे जो समस्त यज्ञ है और मेरी जो समस्त तपस्याएं है उसके परम भोक्ता जो है कृष्ण है, और सभी सर्वलोक महेश्वरम, सभी देवताओं के भी स्वामी वही है, और सभी लोगों के सब भूमि जो है गोपाल की है। तो ये अगर हम जान लेंगे, और सूर्यदम सर्वभूतानाम, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण भगवान जो है वो मेरे हितचिंतक है, वो मेरे वास्तविक में वो मेरे सुहृद है। एक मित्र से भी बहुत बड़ी उपाधि है जो है सुहृद, है ना, तो वो मेरे वास्तविक में सही मित्र है जो मेरा हमेशा क्या करते हैं, मेरा हित चाहते हैं। तो ये अगर कोई व्यक्ति जान लेगा तो इस भौतिक संसार से वो क्या होगा, इस भौतिक संसार से वो मुक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जैसे इसमें भगवद गीता में बताते हैं कि कैसे ये जो भौतिक संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है, दुखालयम अशाश्वतम। तो हमें वो बोलते हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, कि हमें इस दुखों से बाहर निकलना है, क्योंकि ये भौतिक संसार जो है अशाश्वत है, एक तो दुखों से भरा है और ये शाश्वत नहीं है स्थान हमारा, है ना। कोई जैसे वो बोलते हैं कि अगर मेरे धाम में अगर कोई आएगा तो वो व्यक्ति जो है वापस इस भौतिक संसार में नहीं आती, लेकिन आ ब्रह्म भुवनाल लोको, इस भौतिक संसार में आप सबसे ऊपर का लोक जो है और उससे लेके सबसे नीचे का लोक, सभी लोकों में जो है क्या है, केवल पीड़ा ही पीड़ा है। और वापस ये जो जन्म मृत्यु का चक्र जो है, जन्म मृत्यु का चक्र चलते ही रहता है। तो भगवद गीता सिखाती है हमें कि कैसे इस जीवन में रह के हमें अगले जीवन की तैयारी करनी है। जैसे कहानी आती है, एक बार एक बहुत बड़े व्यापारी जो थे, वो व्यापारी समंदर से जा रहे थे उनकी जहाज को लेके, उनका जो भी उन्होंने उनके सामान था वो सामान को लेके वो जहाज से जा रहे थे। और उस समय उस समंदर में बहुत बड़ी आंधी तूफान आता है और उसमें वो जहाज जो है वो जहाज डूब जाती है। लेकिन ये जो व्यापारी थे वो व्यापारी किस तरह से बच जाते हैं और एक द्वीप पे जाते हैं, वो आइलैंड पे जाते हैं। और वहां पे जैसे ही जाते हैं तो वहां पे कुछ लोग जो थे वहां पे खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही वो आते हैं तो उनको उनको पूरी स्वागत के साथ उनका उधर सम्मान करते हैं कि आइए आप यहाँ पे आपका स्वागत है करके, और उनको हार डालते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनको एक राजा की तरह उनको सम्मान देते हैं और राजा बना देते हैं वहां पे। तो ये बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे मैं गलती से आ गया, इस आंधी तूफान में फंसा हुआ था और यहाँ पे आ गया मैं, और ये लोगों ने इतना सम्मान दिया मेरा। तो उनको पूछते हैं, अरे क्या हो गया, आपने इतना सम्मान क्यों क्यों दे रहे हैं मुझे आप? तो बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो पूर्वजों ने बताया बताया था कि आपका जो होने वाला अगला जो राजा है, जो होने वाला अगला राजा है वो इसी दिशा से आएगा। तो आपको हमें देखा कि आप इस दिशा से आ रहे हैं तो आपको हमने राजा बना दिया। तो उनको राजा बना देते हैं। और फिर जैसे कुछ समय बीत जाता है तो उनको पता चलता है कि मैं जो राजा बना हूँ इस जगह पे, ये राजा जो है केवल 1 साल के हूँ, 1 साल के लिए बना हूँ। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए बना हूँ। और फिर वो पूछते हैं कि 1 साल के बाद मेरा क्या होगा? फिर वो उनके जो मंत्री थे वो मंत्री बोलते हैं, ऐसे जो राजा है जो 1 साल के लिए बनते हैं और 1 साल के बाद हम उनको ऐसी जगह पे छोड़ देते हैं कि जहां पे कोई भी नहीं है, जहां पे कोई कोई आदमी भी नहीं रहता, वहां पे कोई जीव वहां पे नहीं रहता, ऐसी जगह पे छोड़ देते हैं उनको। तो बहुत चिंता हो जाती है उनको, अरे केवल 1 साल के लिए इतना कुछ, अरे एक राजा के राजा का जो जितना भी सुख है वो राजा का सुख मैं भोग कर रहा हूं 1 साल के लिए, लेकिन 1 साल के बाद मेरी हालत क्या होगी, मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं है, ऐसी जगह पे मुझे छोड़ा जाएगा। तो वो राजा क्या करता है, अभी उनके पास जितना भी समय बचा था उस समय में वो राजा बोलते हैं कि ढूंढ लेते हैं कि मुझे कहाँ पे छोड़ने वाले हैं, कौन से द्वीप पे मुझे छोड़ने वाले हैं। तो उस द्वीप पे जाके वो राजा क्या करते हैं, अपना जितना भी उनका जो शक्ति था उनके पास, जितना भी उनके पास धन था, उस धन को उधर लगा देते हैं उस जगह पे जहाँ पे उनको छोड़ा जाएगा। और वहाँ पे सुंदर महल बना देते हैं, घर बना देते हैं, सुंदर जगह बना देते हैं, वो रहने लायक बना देते हैं। और जब समय आता है उनको, जब छोड़ने का उधर उधर भेजने का समय आता है तो वहाँ पे वो क्या होता है, आराम से उधर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सब व्यवस्था कर दी उन्होंने पहले से ही, है ना। तो उनको कुछ चिंता नहीं रहती उनके जीवन में क्योंकि उनको मालूम था कि मुझे अभी यहाँ पे जाना है और मेरी सब व्यवस्था जो है हो गई है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ये जो मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, इस जीवन में हमको देखना है कि हमें इस जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इस मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। ये प्रश्न आपके मन में आता है कि मुझे कि कभी को कभी हम कभी हमें मृत्यु आने वाली है, आता है कभी प्रश्न आता है ये कभी किसके मन में, किसके मन में आता है, किसके मन में आता है, हाथ उठाइए कि मेरा मृत्यु होने वाला है और मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। हाँ, तो ये भगवद गीता जो है, भगवद गीता हमें इसका उत्तर देती है कि हमें इस मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा और हम कैसे इस मृत्यु के लिए हम तैयारी कर सकते हैं। तो जीवन जो है, जीवन एक तैयारी है और मृत्यु जो है, मृत्यु क्या है, एक परीक्षा है तो इस परीक्षा को सबको उतरना है ना। इस परीक्षा को जो है सबको परीक्षा देनी है अपने जीवन में कभी ना कभी। तो इसके लिए हमें तैयारी जो है, तैयारी करनी पड़ेगी। और ये जो राजा था उस राजा की तरह हमें अगला जीवन हम कहाँ जाने वाले हैं इस मनुष्य जीवन में हम तय कर सकते हैं, एक पशु के जीवन में हम तय नहीं कर सकते हम मैं कहाँ जाऊंगा क्या करूंगा। तो ये मनुष्य जीवन में संभव है, एक पशु की योनि में आके हम नहीं कर सकते हो। तो ये भगवद गीता जो है, ये भगवद गीता हमें ज्ञान देती है कैसे इस मनुष्य जीवन का हमें उपयोग करना है। तो ये मनुष्य जीवन जो आप हमको यहाँ पे मिला है, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। 84 लक्ष योनियों को घूम के हम यहाँ पे आए हैं, है ना, और अभी हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो जन्मे जन्मे सब पिता माता पाए, गुरु कृष्ण नहीं मिले। तो बोलते हैं कि कैसे ये जीवन जो है, हर एक जन्म में हमको माता पिता मिल जाते हैं, हर एक जन्म में। तो हम जिस जन्म में, हम इस जन्म में भी है, तो हमको हमारे लिए, हम हमारे माता पिता है, हमारा परिवार है। तो इसके पहले, इस जन्म, ये जन्म मिलने से पहले हमारे दूसरे माता पिता थे। अगला जन्म कोई हम मरने के बाद दूसरा जन्म मिलेगा तो उसमें अलग माता पिता बनेंगे। तो ऐसे हर एक जन्म में माता पिता तो मिलते रहेंगे, लेकिन कृष्ण और गुरु जो है वो नहीं मिलेंगे हमको हर एक जन्म में। तो ये बहुत ही दुर्लभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हमें ये श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु प्राप्त हुए, जिन्होंने इस भगवद्गीता का ज्ञान जो है पूरी विश्व में दिया है। और देख सकते हैं कि इस भगवद्गीता को, भगवद्गीता यथारूप, भगवद्गीता जशी आहे तशी, और भगवद्गीता एज इट इज, इसको स्वीकार करते करके लोगों के जीवन में परिवर्तन देखा है लोगों ने। तो इसलिए भगवद्गीता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ऐसे कितने लोगों के घर में नहीं है भगवद्गीता, हाथ उठाइए। कितने लोगों के घर में नहीं है भगवद्गीता? नहीं है आपके पास? आपके भी नहीं है? तो कृपया करके यहाँ पे सुंदर स्टॉल है, गीता जयंती का महीना है, ये भगवद्गीता आप लेके जाइए। जो भी भाषा पढ़ते हैं, हिंदी, गुजराती, मराठी, वो भाषा में यहाँ पे जो है सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, जिससे कि हम भगवद्गीता इसको समझ सकते हैं, है ना। तो ये भगवद्गीता आप यहाँ से लेके जाइए, है ना। तो इस प्रकार से, तो अभी हम इसको जस्ट हमारा प्रवचन पूरा करने से पहले एक श्लोक बोलेंगे, जो संजय बोलते हैं इस भगवद गीता के अंत में। तो उस श्लोक को हम बोलेंगे। तो मेरे पीछे आप सब बोलिए, यहां पे बोलते हैं संजय, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। तो ये संजय जो है, ये संजय हस्तिनापुर में बैठे हैं, और ये संजय किसको बोल रहे हैं भगवद्गीता?
धृतराष्ट्र
को बोल रहे हैं। और इस भगवद्गीता के अंत में ये संजय, जो व्यास देव जी के शिष्य है, बहुत ही बड़े विद्वान है, ये संजय ये भगवद्गीता को सुन के बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, हे राजा, सुनिए, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धरी अर्जुन है, वहां ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है, ऐसे बोल रहे हो। तो जहां पे भगवान है, कृष्ण भगवान है, और जहां पे उनको प्रेम करने वाले उनके भक्त, अर्जुन जैसे भक्त है, वहां पे क्या होगा? ये चार चीजें होगी। चार चीजें कौन सी है? वहां पे ऐश्वर्य होगा, वहां पे विजय, ऐश्वर्य यानी स्वयं लक्ष्मी जी, वहां पे लक्ष्मी जी का वास होगा वहां पे, वहां पे विजय होगा, वहां पे अलौकिक शक्ति होगी, और वहां पे नैतिकता होगी। तो हमें चाहिए हमारे जीवन में ये चार चीजें चाहिए ना, हमारे जीवन में अलौकिक शक्ति चाहिए हमें, हमारे जीवन में हमको यश चाहिए, हमारे जीवन में हमको ऐश्वर्य चाहिए, और हमारे जीवन में हमको नैतिकता भी चाहिए, नीति भी चाहिए। तो इसको हम पा सकते हैं इस भगवद्गीता के ज्ञान के द्वारा। तो कृपया करके इस भगवद्गीता को, जो ज्ञान है, इस ज्ञान को अपनाइए। और ऐसे इतना बोल के मैं मेरा जो यहाँ पे कथा है इसको संपन्न करूँ। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सर्वात्मा हरि प्रभु। प्रभु जी का हम पारंपरिक रूप से 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी 12 बजे श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होगा। 12 से 12:30 बजे तक डांसिंग कीर्तन करते हुए हम इसमें भाग ले सकते हैं। उसके पश्चात 12:30 बजे सबके लिए लंच प्रसाद की व्यवस्था है। दर्शन खुलने से पहले एक अनाउंसमेंट है। जो भी भक्त पहली बार आज इस संडे फिस्ट रविवार सत्संग कार्यक्रम में आए हैं, उनका हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आपका यह दिन आपके मंगलमय कृष्ण भावनामय जीवन का अच्छी शुरुआत बने, और हर रविवार को आप इस संडे फिस्ट कार्यक्रम में आके हमें उत्साहित करते रहें। हर रविवार को सुबह 10:30 से 12:30 इस समय में हम संडे फिस्ट रविवार सत्संग कार्यक्रम मनाते हैं। तो हम गोवर्धन इको विलेज की तरफ से आपको इसका आमंत्रण देते हैं, हर रविवार को आप आ सकते हैं। इसी समय में जो ललिता भवन है वहाँ पे बच्चों के लिए गोवर्धन फन स्कूल भी चालू हुआ है। उसमें बच्चों को अलग अलग स्कूल श्लोका पढ़ाए जाते हैं, अनेकों कृष्ण भावना भावित खेल है उनको वो सिखाए जाते हैं, श्लोक पढ़ाए जाते हैं, उनको कथाएं बताई जाती है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो पेरेंट्स को वो निवेदन है कि वे गोवर्धन फन स्कूल में बच्चों को संडे को लेके आ सकते हैं। वो निःशुल्क है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। और जो भक्त आज पहली बार इस संडे फिस्ट कार्यक्रम में आए हैं उनको विनती है कि जाते समय हमारे स्वागत अध्यक्ष माधव प्रेम प्रभु और उनकी टीम है उनसे मिलते हुए जाइए। वे यहाँ पे बैठेंगे या वहाँ पे खड़े रहेंगे, वे आपको एक उपहार श्रील प्रभुपाद जी का एक पुस्तक आपको उपहार के रूप में देंगे। उसके साथ ही साथ आपके कृष्ण भावना के विषय में या इस मंदिर के गतिविधियों के विषय में कुछ प्रश्न हैं तो उसका समुचित उत्तर भी देंगे। तो हम आपसे विनती करते हैं कि जाने से पूर्व प्रभु जी से मिलते जाइए। सबको लंच कूपन मिले हुए हैं, जिन भक्तों को लंच का कूपन नहीं मिला है उनके लिए भी प्रसाद की व्यवस्था है। सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था ललिता भवन यहाँ से लेफ्ट साइड में सीधा जाएंगे तो वहाँ पे है। तो जाने से पूर्व प्रसाद लेते हुए जाइए। इवनिंग में 6:20 को यमुना आरती होता है, उसके पूर्व गोवर्धन गिरिराज जी का आरती होता है और उसके पश्चात मान मंदिर में भजन भी होते हैं। तो जिनको पॉसिबल है उनसे विनती कर दे कि वे शाम तक रुके और शाम के ये जो कार्यक्रम है उनका भी आनंद ले। हरे कृष्णा। अभी सभी लोग आरती के लिए खड़े हो सकते हैं और भगवान का सामने जाके दर्शन भी ले सकते हैं। हरे कृष्णा।